ये 3 मिनट की वाणी है, इसको ध्यान से श्रवण करें, फिर इस पर विचार होगा।
गुरुमुख मन मुख का सुनो विचार, परम निधान सब जीव आधार, मार्ग दोई जग में दिखलाए, एक मुकत पछाने एक बंधन पाए, नित ही जुगत से करो विचार, सतत बूझे मिटे जीव आजार, सबसे उत्तम ये ही विवेक, गुरमुख मन मुख का पावे लेख, सार असार का निर्णय ध्याए, सार पछाने परम गत पाए, मार्ग दो संसार में परगट साहब कीन, मंगत जैसा जो चले होए तिस ही में लीन, मार्ग दो संसार में परगट साहब कीन, मंगत जैसा जो चले होए तिस ही में लीन,
मार्ग दोई जग में दिखलाए, एक मुकत पछाने एक बंधन पाए, नित ही जुगत से करो विचार, सततत बूझे मिटे जीव आजार, आजार कहते हैं दुख को। इस जगत में मनुष्य के लिए दो मार्ग हैं, एक मार्ग पर चलकर दुखों से मुक्ति मिलती है उसको, और दूसरे मार्ग पर चलकर बंधन मिलता है, किस रूप में, सुख दुख रूप में या द्वंद्व रूप में। तो जब जीवन में हर दिन मेरा ऐसा बीतता है, हर वर्ष मेरा ऐसा बीतता है कि मुझको द्वंद्व देखने को मिलता है, सुख दुख देखने को मिलता है, जो चीज निरंतर परिवर्तित होती रहे वो मनुष्य के लिए बेचैनी का कारण बनती है, अशांति का कारण बनती है। तो एक अशांति का मार्ग है, एक शांति का मार्ग है, यदि सीधे शब्दों में कहा जाए। हर व्यक्ति से पूछो तो यही कहेगा मुझे तो शांति चाहिए। क्यों कहता है शांति चाहिए? क्योंकि उसका अनुभव बोलता है कि संसार में हमेशा ही बेचैनी बनी रहती है, हमेशा ही जिम्मेदारी बनी रहती है, हमेशा ही जिम्मेदारी का बोझ बना रहता है, यहां कभी भी कोई भी वर्ष स्थिरता के साथ या चैन के साथ मनुष्य का नहीं होता। इसलिए उसके अंदर नेचुरल डिजायर उठती है, नेचुरल इच्छा उठती है कि मुझको ऐसा मार्ग मिल जाए जिस पर चलकर मेरा मन शांत हो जाए या मैं शांत हो। हम यदि अपने अंदर विचार करें, क्योंकि बाहर संसार में तो हम विचार करते ही रहते हैं, रात दिन हमारा संसार में ही विचार चलता है, लेकिन सत्पुरुष कहते हैं कि वो प्रभु अंतर्गत है। जब वो अंतर्गत है और वो शांति का सागर है, शांति का स्रोत है। शक्ति का सागर है, शक्ति का स्रोत है। तो उनका विचार तो अंदर ही हो सकता है, इसीलिए एक बाहर संसार में विचार करने की स्थिति है, एक अंतर्गत प्रभु के दुनिया में विचार करने की स्थिति है। इसी को गुरुमुख और मनमुख मार्ग कहा जाता है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरे मन में इच्छाएं होती हैं, मेरे मन में संकल्प उठते हैं, मेरे मन में बेचैनी उत्पन्न होती है। ऐसा कोई नहीं है जो यह बात ना जानता हो कि मन की बेचैनी के कारण मैं बेचैन हो जाता हूं, मैं परेशान हो जाता हूं। लेकिन दूसरी चीज भी है, ईश्वर भी है। हम सब ईश्वर को मानते हैं लेकिन जानते नहीं है। वाणी में, शास्त्रों में, सत्संग में हम बार बार सुनते हैं कि ईश्वर है और अंदर है। किस रूप में अंदर है? जीवन शक्ति के रूप में अंदर है और जीवन चेतना के रूप में अंदर है। मेरे अंदर जानने की शक्ति है, उसी के कारण है। मेरा शारीरिक जीवन चल रहा है, उसी कारण चल रहा है। आप कितनी भी दवाइयां खा लीजिए, कितनी भी शक्ति वर्धित पदार्थ खा लीजिए, लेकिन जीवन किसी डॉक्टर के, किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। कोई अपने आप को बचा नहीं सकता। आप तभी तक बचे हो जब तक ईश्वर आपको बचा। इसीलिए वो जीवन रूप भी ईश्वर को कहा जाता है और चेतन रूप ईश्वर को कहा जाता है। लेकिन मैं क्योंकि अपने बारे में ठीक प्रकार से विचार नहीं करता, सिस्टमेटिक विचार नहीं करता, युक्तिपूर्ण विचार नहीं करता, इसीलिए किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाता। इसलिए वाणी कह रही है कि नित ही जुगत से करो विचार, सत तत्व बूझे मिटे जीव आजार। सत तत्व यानी जो ईश्वर है, जो मेरे ऊपर है, और जहां आजार अर्थात दुख है जीव का, वो कहां है? वो जीव के नीचे है, अर्थात वो मन के अंदर। तो जीव को बुद्धि भी कहते हैं, जीव को जीवात्मा भी कहते हैं। तो जीवात्मा अर्थात मैं मन के क्लेश को अनुभव करता हूं, मन की खुशी को भी अनुभव करता हूं। यदि कोशिश करूं तो ईश्वर की शांति को भी मैं अनुभव कर सकता हूं, क्योंकि दोनों चीजें अंदर ही है। मैं अंदर, मेरा मन अंदर, मेरा ईश्वर अंदर। इसीलिए इस देह को मंदिर कहा जाता है, देह मंदिर। देह को मस्जिद कहा जाता है, देह मस्जिद। क्यों कहा जाता है? मस्जिद और मंदिर क्या होते हैं? उपासना घर होते हैं। लेकिन संसारी व्यक्ति से पूछो तो उपासना घर नहीं है, ये वासना घर है। मेरे मन के अंदर वासना पलती है, इच्छाएं पलती है, आशाएं पलती है, तृष्णा पलती है, तो मैं उनका शिकार हो जाता हूं। तो यदि मैं युक्तिपूर्वक विचार नहीं करता, तब अपने बारे में मेरा ठीक ही निर्णय क्या है, वहां तक मैं नहीं पहुंचता। इसे सारे शास्त्र, चाहे वो गीता के रूप में हो, चाहे वो रामायण के रूप में हो, चाहे वो संत अभिलाष ग्रंथ के रूप में हो, चाहे संत प्रकाश वाणी के रूप में हो, वो आपको आपका ही विज्ञान सिखा रहे हैं। उस विज्ञान के अनुसार जब आप चलते हो, जीवन जीते हो, तब आपका जो संसारी मार्ग है, जिसको मनमुख मार्ग कहते हैं, उसकी बेचैनी से आप धीरे धीरे मुक्त होने लगते हो। और ईश्वर जो शांति का सागर है, आनंद का सागर है, जिसमें इटर्नल लाइफ है, अर्थात मौत है ही नहीं, सदैव का जीवन है, उस ईश्वर के आप धीरे धीरे नजदीक पहुंचते चले। कैसे अचंभे की बात है कि दोनों चीजें अंदर हैं इस देह के। देखिए, मेरी सारी दुनिया बाहर। क्यों बाहर है? क्योंकि मैं अपने अंदर विचार करता ही नहीं। मैंने कभी किसी सत्पुरुष को अपना गुरु बनाया ही नहीं, किसी शास्त्र को अपना गुरु बनाया ही नहीं, जहां से मैंने अकल सीखनी थी। तो संसार की जो ये द्वंद्व रूपी अकल है ये मैं सीख जाता हूँ, इसका अहंकार भी धारण कर लेता हूँ और समझता हूँ एक दिन तो मेरा सफल जीवन हो ही जाए। लेकिन जो भी संसार में आया, जैसे कि अभी भी आप सिकंदर का एग्जाम्पल सुन रहे थे, इससे बड़ा इंसान क्या होगा, कितनी पावर थी इसके अंदर, कहां यूरोप कहां भारत, चलता चलता चला रहा है, सेना के साथ चला रहा है। उस समय तो सड़कें भी नहीं होती थी, पहाड़ नदियां जंगल रेगिस्तान पार करता करता भारत तक पहुंचा। कैसे पहुंचाया, मन के अंदर एक तरंग थी, मात्र एक तरंग थी कि भारत को जीतकर मैं अपना जीवन अपने देश के लोगों का जीवन खुशहाल कर लूं, खुशी से भर जाए। ये एक आशा थी, ये एक उसका लक्ष्य था, ये एक तमन्ना थी। लेकिन सब जानते हैं कि शरीर का एक वक्त है, एक सीमा है, और वो सीमा मनुष्य के हाथ में नहीं दी गई, वो सीमा प्रभु ने अपने हाथ में रखी। उसके अनुसार तेरे जीवन की आयु निश्चित होती है, उसके अनुसार तेरी शारीरिक क्रिया निश्चित होती है। सबको ऐसा लगता है मैं स्वतंत्र हूं, जो चाहे सोच सकता हूं, जो चाहे कर सकता हूं, ना, सोचने में आप स्वतंत्र हो, करने में स्वतंत्र नहीं, क्योंकि देह का जो कर्म है वो प्रारब्ध के अधीन है, देह की जो आयु है वो प्रारब्ध के अधीन है और प्रारब्ध ईश्वर के अधीन है, उसका मालिक केवल ईश्वर है। मैं प्रारब्ध का मालिक नहीं हूं, क्यों नहीं हूं, क्योंकि मुझको पता ही नहीं है मेरा क्या प्रारब्ध। सिकंदर इसी गफ तक तो चला गया, उसको पता ही नहीं कब मर जाऊंगा, क्या क्या परिस्थितियां मुझको देखने को मिलेंगी, उसका भी पता नहीं उसको। यदि पहले से पता होता तो आता ही नहीं भारत को, भारत क्यों आता हुआ? उसको पता नहीं है मेरा क्या प्रॉब्लम। इसीलिए बार बार सबको एक ही बात कहते हैं कि ईश्वर परायण जीवन अपनाओ, अर्थात ईश्वर आधारित जीवन अपनाओ। क्यों ईश्वर आधारित? यदि आपने ईश्वर आधारित जीवन व्यतीत किया तो आप अपने अंदर के विज्ञान को समझ लोगे, आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, मन के अंदर जो वासनाएं हैं वो भी पवित्र हो जाएंगी। पवित्र का मतलब जो खोटी वासनाएं हैं वो निकल जाएंगी, जो अच्छी, जो प्रभु किसी के मन के अंदर प्रभु की ओर अग्रसर होने की भी तो इच्छा होती है, अच्छी जो आपकी जो इच्छाएं हैं वो बच जाएंगे, अर्थात आपका जीवन गुरुमुख हो जाएगा, मनमुखी नहीं रहेगा। तो मैंने यदि अपने विज्ञान को सीखा ही नहीं, इस प्रकार से चिंतन करने की आदत बनाई ही नहीं, तो फिर कितना भी आप सत्संग सुनते रहो, कितने भी शास्त्र पढ़ते रहो, कितने भी आप रामायण के पाठ करते रहो, कुछ भी करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। एक अंदर बस वहम पड़ जाता है कि मैंने पूजा कर ली, मैंने पाठ कर लिया, ईश्वर को याद कर लिया, बस दिन भर संसार में भी अपना व्यवहार चालू है। कोई संसारी सुख के लिए जीते हो, बच्चे परिवार पालने के लिए जीते हो, धीरे धीरे आयु खत्म हो जाती है और पता लगता है सिकंदर की तरह मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है। इसीलिए शरीर के रहते रहते मैंने इस देह के अंदर जो ईश्वर सत्ता स्थित है उसका अनुभव प्राप्त करना, प्रभु के सिमरन कार ने ये दुर्लभ जीवन पाए। मानुष जन्म सफल हो गए जब प्रभु दाता चित आए। चित कहते हैं चेतना, और चेतना बुद्धि में होती, जीव के अंदर होती है। तो जब जीव के अंदर वो ईश्वर का महत्व बैठ जाता है, तब ये जीव फिर मनमुखी जीवन की बजाय ये गुरुमुखी जीवन व्यतीत करता है, अर्थात गुरु की बात को गहराई से समझने की कोशिश करता है, उसके अनुसार अपनी दैनिक क्रिया बनाता है, उसके अनुसार फिर आगे का जीवन जीता है। इसके जीवन का लक्ष्य होता है, मैंने शांति प्राप्त करनी है, मैंने प्रभु का आनंद प्राप्त करना है, संसार की चेतन जो सुख दुख के रूप में हमको भोगने को मिलती है इसमें मैंने संयम रखना है। काम चलाने के लिए अर्थात अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए, पारिवारिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए मैंने बाहर देखना है, बाहर क्रिया करनी है, उसके अंदर से प्लानिंग ऐसी होती है। बाकी क्या होगा ये तो आपको पता ही नहीं, क्योंकि वो प्रारंभ में डिसाइड करें, कि आपका जो लक्ष्य होता है वो आपके सामने बिल्कुल क्लियर होता है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप जीते हो, बहकते नहीं हो। मां जी कहते हैं कि प्रेमी प्रारब्ध वर्ष घर में बहुत दौलत इकट्ठी हो सकती है, तूने कमाई नहीं करी तब भी इकट्ठी हो सकती है, लेकिन तूने उसमें से उतना ही उपयोग करना है अपने लिए जिसमें तेरे देह की आवश्यकता पूरी हो जाए। कहां परमेश्वर मर्यादा का करे खान पान, चाहे घर में भरे अंबा, वाणी तो साफ कह रही है, प्रभु ने दे भी दी दौलत तो तेरा सर्वनाश करेगी, तेरे जीवन को मनमुखी बना देगी, मन के अंदर तरह तरह की इच्छाएं पैदा होंगी, दौलत भगवान ने दी है उसको तू उसका भोग करेगा, जब तू भोग करेगा उसका तो उसके संस्कार बनेंगे या नहीं बनेंगे, संस्कार कहां बनेंगे, वो संस्कार मन के अंदर बनते हैं। और तेरी यदि मृत्यु हो गई अगली देह तुझको प्राप्त होगी, संस्कार तेरे भोगों के बने हुए भोगने के, तो अगले जन्म में ये संस्कार तो तुझको मिलेंगे लेकिन माया गायब होगी तेरे, उन संस्कारों के अनुसार जो सुख भोगने की इच्छाएं तेरे अंदर पैदा होगी वो चीजें गायब मिलेंगी तुझको, वहां नहीं मिलेंगी तुझको। इसीलिए इस जन्म का सुख अगले जन्म के लिए भी दुख बनेगा और इस जन्म के लिए भी दुख बनता ही है वो, क्यों, क्योंकि मनुष्य किसी भी स्थिति में संतुष्ट नहीं हो सकता। यदि संतुष्ट हो सकता होता तो सबसे बड़ा रावण था इस भारत देश धरती पर, इतनी शक्तियां थी उसके पास, इतनी माया थी, सोने की लंका खिलाती थी, हो जाता संतुष्ट, क्यों सीता का हरण करके ले आया। तो सारा इतिहास इस बात का गवाह है कि मनुष्य किसी भी हालत में इस धरती पर रहकर संतुष्ट नहीं हो सकता, ये सत्पुरुषों की फाइनल बात है। बल्कि वो कहते हैं जितनी माया उसने भोगी है उतनी ज्यादा गहरी बेचैनी लेकर वो संसार से विदा, क्योंकि संस्कार बना है और उसको पता है कि ये देह जाने वाली है, मैं जाने वाला हूं। जितना ज्यादा भोग विलास किया है उतना ही ज्यादा वो मौत के वक्त तड़पता है और अगला जन्म भी तड़पने में ही बीतता है, क्योंकि संस्कार उसने ये बनाया, अब चीज मिलेगी नहीं। इसीलिए वही बात है कि सत संपत्ति के कारण जतन करोगे, सत संपत्ति के लिए मानव जन्म मिला था उसके लिए तुम्हें रात दिन यत्न करना था। यत्न कौन सा था कि मन तेरा बाहर सुख को ढूंढने के बजाय अंदर सुख ढूंढने की कोशिश है, बुद्धि जो विचारशील थी जिसमें विचार का निर्णय बैठता है, बुद्धि सीख लेती है, वो सत विचार की बात सब कुछ करते हैं कि सत विचार तुम्हें करना था बुद्धि, मैंने वो एनालिसिस वो विश्लेषण सीखा ही नहीं, तो मेरे नीचे मेरा मन है और मेरे ऊपर मेरा परमात्मा है, मेरा ईश्वर, ईश्वर शांति का सागर है, मन बेचैनी का सागर है, दोनों अंदर ही, तो मैं त्रिशंकु की तरह से बीच में लटका हूं। तो इसीलिए यदि आपने जीवन में गुरु धारण नहीं किया, गुरु का मतलब होता है कि गाइड, किस मार्ग का गाइड, ईश्वर मार्ग का गाइड, क्योंकि वो जो अंतर्यामी ईश्वर है वही गुरु बनकर बाहर प्रकट हुआ है, देह नहीं है वो, लेकिन मैं तो ईश्वर को अनुभव कैसे करूंगा, ईश्वर से मार्गदर्शन कैसे ग्रहण करूंगा, इसलिए वो अवतार लेकर, या यूं कहिए कि उस देह में वो अवतरित होता है। देह में तो मैं भी अवतरित हूं, मुझको जीव कहा जाता है और उसको गुरु कहा जाता है, वो ज्ञान रूप है, मैं अज्ञान रूप हूं। क्यों अज्ञान रूप हूं, क्योंकि मैं अपने को देह समझ रहा हूं, और गुरु तीन काल अपने आप को देह नहीं समझता, वो आपको भी गाइड करता है, अपने लिए अपने बारे में कहता है, सतगुरु तो अंतर रमे पल पल करे पुकार, तू आज्ञाकारी हो के घटका पाठ उधार। कौन सा घटका पाठ है? तो अंदर ईश्वर का जो अनुभव होता है वही घटका पाठ है। किसकी आज्ञाकारी हो गए? गुरु की आज्ञाकारी। तो गुरु का जो संदेश है, गुरु की जो बात है, गुरु की जो वाणी है, वो आपको गाइड कर रही है, पूरा विज्ञान है मेरा। तो मैं उसको कितनी लापरवाही से सीखता हूं ये हम सब जानते हैं। एग्जाम आप केमिस्ट्री का देने जाओ, फिजिक्स का देने जाओ, मैथमेटिक्स का देने जाओ, कितनी एक्यूरेसी के साथ सीखते हो। आप जानते हो कि कहीं भी मैंने मिस्टेक कर दी तो क्वेश्चन मेरा गलत हो जाए, नंबर कट जाएंगे, आप अच्छी तरह जानते हो। लेकिन ईश्वर का मार्ग इतना कीमती है, उसके लिए इतनी लापरवाही कि किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को मैं सिस्टमेटिक सीखने की कोशिश ही नहीं करता। हाँ, मैंने सुन लिया, एक भावना पाली, मैं सब जानता हूं। तो इंफॉर्मेशन तो सारी किताबों में आप ले ले, तो फिर एग्जाम की तैयारी क्यों करते हो? तो इंफॉर्मेशन सत्संग नहीं होता, इंफॉर्मेशन शास्त्र नहीं होते, ये परफेक्ट साइंस है, मेरा विज्ञान है। इसीलिए जब तक मेरा सत्पुरुषों की बात का जो महत्व है मेरी बुद्धि में, जब तक वो नहीं बैठता, तब तक मैं लापरवाह बना रहता हूं और इसी प्रकार वासना के चक्र में फंस के संसार में बर्बाद होता रहता हूं। और जब शरीर का अंत आता है तो दुखी होकर, बेचैन होकर संसार से विदा होता है। चलो, आखिरी मौत आ गई आपकी, खेल खत्म हो गया। लेकिन ऐसा होता है, शरीर तो मैं कभी था ही नहीं, शरीर मेरे ऊपर एक खोल की तरह चढ़ जाता है, और शरीर से क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार क्रियाएं होती हैं, इसलिए मैं दो अहम पाल लेता हूं, मैं करता हूं और मैं देह हूं। ये दो अज्ञान के अहंकार मैं अपने जीवन में पाल लेता हूं। सत्य है ना मैं करता हूं ना मैं देह हूं, क्योंकि देह क्रिया करती है प्रारब्ध के अनुसार, प्रारब्ध ईश्वर ने डिसाइड कर दिया, इसलिए अंदर बैठा बैठा वही इसका मैनेजमेंट को संभालेगा। तो मेरी स्वतंत्रता है कहां पर? मेरी स्वतंत्रता अपने मन पर है, मेरी स्वतंत्रता अपने निर्णय पर है। तो बुद्धि चाहे तो अपना निर्णय बदल सकती है, अपने निर्णय को वैसा बना सकती है जैसा सतपुरुष ने निर्णय वाणी में कर रखा है, शास्त्र में कर रखा है। और मन के अंदर जो संसार की वासनाएं हैं ये 100% खत्म कर सकती है। बुद्धि की ये सामर्थ्य है, मेरी ये सामर्थ्य, मैं 100% इस मन की सारी वासनाएं खत्म कर सकता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि देह आपकी चलेगी नहीं, फिर देह चलेगी, क्योंकि उसका मैनेजमेंट ईश्वर ने अंदर बैठे हुए संभाल रखा है, उसके लिए उसने संसार का मैनेजमेंट संभाल रखा है। हर व्यक्ति का जैसा प्रारब्ध है उसके अनुसार जीवन में सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं। सिकंदर आया भारत में इसलिए नहीं आ गया कि अपनी इच्छा से आ गया, वो इसका प्रारब्ध था जो यहां तक ले आया, यहां आके उसकी वापसी में मौत हो गई, ये भी उसका प्रारब्ध था, ये प्री डिसाइडेड था, इसमें अनहोनी कुछ नहीं हुई थी। हम तो ये कहेंगे बड़ा अहंकारी था, लेकिन वो प्रारब्ध के कारण मजबूर था। भारत की यात्रा तो करी उसने, लेकिन यहां आकर वो यहां के सत्पुरुषों से सीख भी तो सकता था, अपनी बुद्धि के निश्चय को बदल भी तो सकता था, लोगों की सेवा की भावना भी तो उसमें पैदा हो सकती थी। लेकिन यहां तो वो लूटने के लिए आया था, राज्य करने के लिए आया था, सुख प्राप्त करने के लिए आया था। तो प्राग के अनुसार उसका देह चल रही है, संसार में घूम रही है, लेकिन उसके प्राग के अनुसार ही उसको सुख मिल रहे हैं और दुख मिल रहे हैं। लेकिन उसका प्रभाव उस पर क्या पड़ रहा है, इसके लिए वो स्वतंत्र। उस सुख दुख का, उस वातावरण का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके लिए ये जीव स्वतंत्र है। ये मैं डिसाइड कर सकता हूं कि मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ना चाहिए। इसीलिए अंतर्यामी जो प्रभु है उसके सिमरन की बात संतोष करते हैं, उसकी याद की बात संतोष करते हैं, उसकी उपासना की बात संतोष करते हैं, तो प्रभु के सिमरनकार ने ये दुर्लभ जीवन पाए। ये मानव जन्म दुर्लभ है, याद रखिए। सारी योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि है, इस सर्वश्रेष्ठ योनि में मैं यदि मैंने सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य पालन नहीं किया तो फिर मेरी दुर्गति होती है। ईश्वर मुझे सजा देते हैं, कितने भाग से कितने जन्मों के शुभ कर्म इकट्ठे हुए होंगे तब ये मानव योनि मिली और मैं उसको इसकी ऐसी बर्बादी कर रहा हूं, होश ही नहीं मुझको। जरा जरा सी चीजों के लिए घर में लड़ता रहता हूं, समाज में लड़ता रहता हूं, लोगों को धोखा देता रहता हूं। तो इसीलिए मानव जन्म यदि ठीक व्यतीत करना है तो इसका एक ही रास्ता है, गुरुमुख। गुरुमुख का मतलब है अंतर्यामी ईश्वर की याद करना, उसकी याद में सफलता प्राप्त करने के लिए उसके विज्ञान को सीखना, और मैं कौन हूं इसको याद रखना, अर्थात मैं जीव हूं, मैं वो जीव हूं जो निर्णय करता है, मैं वो जीव हूं जो मन के अंदर क्या संकल्प उठ रहा है वो जानता है, मेरे मन में जो संकल्प उठता है मैं तुरंत जान लेता हूं मेरे मन में क्या होता है, और मेरे ऊपर जो गुरु है, जो अंतर्यामी ईश्वर है, वो मुझको जानता है, उसी प्रकार जानता है जैसे मैं अपने मन के संकल्प को तुरंत जान लेता हूं, वो भी मेरे बारे में तुरंत हर वक्त जानता है। इसीलिए यदि मैं उसकी ओर चलने की इच्छा करता हूं तो वो मेरी सहायता करता है। कौन सी सहायता करता है? कि मैं जल्दी से जल्दी उस तक कैसे पहुंच जाऊं, इस मार्ग में वो मेरी सहायता करता है। ये गुरुमुख मार्ग है, नहीं तो दूसरा मनमुख मार्ग है। मनमुख मार्ग में आपको द्वंद्व मिलता है, सुख दुख मिलता है, जिसमें मनुष्य हमेशा बेचैन रहता है, और जो ईश्वर की तरफ चलता है जिसका गुरुमुख मार्ग है, वो शांति प्राप्त करता है, अपने सुख दुख के बंधन से आजाद हो जाता है। ओम धन्यवाद।